नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के समापन समारोह के दौरान भारतीय प्रवासियों को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, लैंगिक समानता और महिलाओं का विकास भारत की विदेश नीति का अभिन्न अंग है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 13 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया और महिला क्रिकेट में आयरलैंड ने राजकोट में 3 वनडे मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि कुंभवाणी न केवल लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों को छुएगी, बल्कि महाकुंभ की भावना को दूरदराज के गांव तक भी पहुंचाएगी, जहां के कई लोग अपनी इच्छा के बावजूद शारीरिक रूप से इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाते हैं। उन्होंने कहा, प्रसार भारती ने कुंभवाणी के माध्यम से महाकुंभ के सारों को खूबसूरती से उकेरा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, महाकुंभ जाति पंथ और भेदभाव से परे है और एकता का संदेश देता है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुंभ मंगल धुन का भी शुभारंभ किया। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एन मुरुगन वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए और रेडियो चैनल शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कहा है कि प्रसार भारती ने दूरदर्शन के माध्यम से महाकुंभ के लाइव प्रसारण और आकाशवाणी के माध्यम से लाइव प्रसारण के लिए विस्तृत व्यवस्था की है। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी, डीजी आकाशवाणी डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौर, डीजी दूरदर्शन कंचन प्रसाद, डीजी डीडी न्यूज प्रिया कुमार और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक किया जा रहा है। पौष पूर्णिमा पर पवित्र अमृत स्नान के साथ महाकुंभ आरंभ होगा और महाशिवरात्रि के दिन अंतिम अमृत स्नान के साथ ही यह संपन्न होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर के जनता मैदान में आज शाम आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में शामिल होने के लिए वहां पहुंच गई है। सम्मेलन में उनका स्वागत केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और कई गणमान्य व्यक्ति ने किया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि जब तक मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं की जाती, तब तक पूर्ण विकास के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। श्री जयशंकर ने कहा है कि लैंगिक समानता और महिला विकास भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अभिन्न अंग है। भुवनेश्वर में आज प्रवासी भारतीय दिवस के चौथे सत्र की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। इस अवसर पर उन्होंने प्रवासी दिवस महिला नेतृत्व और प्रभाव का जश्न, नारी शक्ति विषय पर चर्चा करते हुए महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। आज 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आखिरी दिन है। सऊदी अरब के जाने माने भारतीय चिकित्सक डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा, जो भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये पुरस्कार स्वास्थ्य देखभाल, सामुदायिक कल्याण और भारत और सऊदी अरब के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के जारी होने के साथ ही 70 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 17 जनवरी तक उम्मीदवार अपना नामांकन भर सकते हैं। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 20 जनवरी रहेगी। मतदान 5 फरवरी और मतगणना 8 फरवरी को होगी। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने आज पूर्वांचली मतदाताओं को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर पूर्वांचली लोगों को फर्जी मतदाता बताते हुए आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर मतदाता सूची से पूर्वांचली लोगों के नाम हटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री केजरीवाल ने कहा है कि वे चुनाव आयोग के पास शिकायत करने गए थे कि भाजपा रोहिंग्या के नाम पर पूर्वांचली मतदाताओं के वोट काट रही है। इस बीच भाजपा सदस्यों ने पूर्वांचली मतदाताओं के खिलाफ श्री केजरीवाल की कथित टिप्पणी के विरोध में आज नई दिल्ली में अशोक रोड से अरविंद केजरीवाल के आवास तक पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाला। पूर्वांचली वोटरों को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच तीखी बयानबाजी के बीच कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने दिल्ली के विकास में पूर्वांचल के लोगों के योगदान की सराहना की है। ओडिशा के पूर्व राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने भारतीय जनता पार्टी में दोबारा शामिल होकर सक्रिय राजनीति में वापसी की है। वे रांची में पार्टी के मुख्यालय में भाजपा में शामिल हुए। केंद्रीय रेलवे और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मध्यम और कम आय वाले लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने वाली नई अमृत भारत रेलगाड़ियां जल्द शुरू की जाएंगी। चेन्नई में आज एकीकृत कोच कारखाने ICF के फर्निशिंग शेड में मीडिया से बातचीत के दौरान श्री वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना देश के हर नागरिक को विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान करने की है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि भारत प्रभावशाली सरकारी नीतियों और पहलों के कारण 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री मुरुगन ने आज कोल्लम के अवनीश्वरम में APPM वोकेशनल उच्च माध्यमिक विद्यालय के सुगाथा सूक्ष्म वनम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। छत्तीसगढ़ में मुंगेली जिले में कल शाम संयंत्र की चिमनी ढह गई है और इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और करीब 5 लोग घायल हो गए। घटना जिले के सारंगांव इलाके में स्थित एक प्लांट में हुई। मलबे में करीब 3 मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। मुंगेली के कलेक्टर राहुल देव ने बताया है कि बचाव अभियान जोरों से चल रहा है। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरवील पाल सिंह ने आज नई दिल्ली में विचार और नवाचार प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि ये मंच युवा कैडेटों को अपने विचार और नवाचार प्रस्तुत करने में सहायता उपलब्ध कराएगा। अमेरिका में लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी अनियंत्रित आग से 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। लगातार बढ़ती आग को देखते हुए लॉस एंजलिस काउंटी के लगभग 1,80,000 लोगों को इलाका खाली करने का आदेश दिया गया है। भारत ने राफेल तूफान के बाद क्यूबा को मानवीय सहायता दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक ORS और मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाओं सहित आवश्यक दवाओं की एक खेप आज क्यूबा भेजी गई है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में घने कोहरे के कारण प्रयागराज एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस और श्रम शक्ति एक्सप्रेस सहित दिल्ली में आने वाली लगभग 26 रेलगाड़ियां देरी से चल रही है। महिला क्रिकेट में भारत और आयरलैंड के बीच राजकोट में खेले जा रहे 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आयरलैंड ने भारत को जीत के लिए 239 रन का लक्ष्य दिया है। आयरलैंड की गेबी लुइस ने सर्वाधिक 92 रन बनाए। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वालालंपुर में आज भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी की जोड़ी का सामना क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ओंग यूसिन और TOEE से हो रहा है। यह मैच भारतीय समय अनुसार शाम 4:40 पर शुरू हुआ। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने राउंड 16 में मलेशिया की अयूब अर्जियन और टेन वी क्योंग की जोड़ी को सीधे सेटों में 21-15 से हराया था। अन्य सभी भारतीय खिलाड़ी अपने अपने मैच हार कर बाहर हो गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2032 को समर्पित आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के समापन समारोह के दौरान भारतीय प्रवासियों को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, लैंगिक समानता और महिलाओं का विकास भारत की विदेश नीति का अभिन्न अंग। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 13 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया और महिला क्रिकेट में आयरलैंड ने राजकोट में 3 वनडे मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।